हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वाओ, कंग्रेचुलेशंस! इंटरेस्टिंग, नाम क्या है उसका? थैंक्स। और उसका नाम? कुछ पल रुककर, आरना। एक पल रुककर, आरना कपूर। रिदांश कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही दक्ष का फोन कट हो गया। रिदांश ने दोबारा फोन ट्राई किया, लेकिन उसका नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर आ रहा था। इसके बाद रिदांश अपने काम में बिजी हो गया। यूं ही एक हफ्ता बीत चुका था। काम में बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से इस बीच रिदांश की दक्ष से कोई बात नहीं हो पाई थी। शाम का वक्त था और रिदांश ऑफिस का काम निपटाकर घर के लिए निकलने वाला था कि तभी दक्ष की कॉल आई। रिदांश ने उसका फोन पिक किया।
हेलो, व्हाट्स अप ड्यूड?
सब खत्म हो गया रिदु, सब खत्म हो गया।
क्या हुआ है दक्ष? दक्ष की आवाज सुनकर ही रिदांश के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए थे, क्योंकि पहली बार था जब दक्ष इतना ब्रोकन और दुखी साउंड कर रहा था, और उसकी लड़खड़ाती आवाज से साफ मालूम पड़ रहा था कि इस वक्त वो बहुत नशे में था। दक्ष भावुकता से,
उसने सब खत्म कर दिया रिदु। उसने कहा कि उसने तो मुझसे सिर्फ मजाक किया था, वरना उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं है। पहले मुझे लगा वो बस मजाक कर रही है। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया और कहा कि वो इतने दिन से मेरे साथ थी क्यों, क्योंकि उसे गलत फहमी हो गई थी और उसे लगा था कि मैं अग्निहोत्री कंपनी का असली ओनर रिदांश अग्निहोत्री हूँ। और अब जब उसे सच पता चल ही गया तो उसका मेरे साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। दो दिन से मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं खुद को अपने दर्द दिल को और नहीं संभाल सकता।
फोन कान से थोड़ा दूर करते हुए टॉम से, टॉम, दक्ष की लोकेशन का पता लगाओ और फटाफट वहाँ किसी को भेजो, फास्ट। टॉम अपना सर हिलाते हुए, यस बॉस, इतना कहकर टॉम जल्दी से कैबिन से चला गया। दक्ष भावुक होकर,
नहीं सहा जा रहा अब ये दर्द।
रिदांश, दक्ष, कहाँ है तू इस वक्त?
इस बेरहम दुनिया से बहुत दूर, और अब मुझे जीना ही नहीं। और
जस्ट शट अप दक्ष, और मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ हो। दक्ष भावुकता से,
मैंने बहुत कोशिश की कि उसे भूलकर आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैं चाहकर भी ये नहीं कर पाया, और अब मैं इस दर्द से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। बस तो अपना ख्याल रखना, और हर जन्म में बस तो मुझे ऐसे ही मेरा दोस्त बनकर मिलना। मुझे माफ कर देना रिदांश, मैं तुझे जिंदगी के सफर में यूं ही बीच में छोड़कर जा रहा हूँ।
जस्ट शट अप दक्ष, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। सुना तूने? तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं बस आ रहा हूँ जल्द से जल्द तेरे पास। तू बस तब तक कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा, तुझे मेरी कसम दक्ष। रिदांश दक्ष की तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने पर कई बार हेलो हेलो बोला, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिल पाने पर रिदांश आखिर में फोन कट कर देता है और बार बार उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। और कुछ देर बाद दक्ष का फोन बंद आने लगता है, और तभी कैबिन में टॉम आता है और रिदांश को बताता है कि शिमला में मौजूद उसके लोगों ने दक्ष की लोकेशन को ट्रैक कर लिया है और वो जल्दी ही उसके पास पहुंच जाएंगे। रिदांश को टॉम की बात सुनकर थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पूरी तरह से सुकून से नहीं बैठ सकता था, इसीलिए वो अपने घर पर सुरक्षा बढ़ाकर और उनकी सेफ्टी को लेकर सेटिस्फाइड होकर वहाँ से टॉम के साथ फौरन रात में ही अपने प्राइवेट जेट से शिमला के लिए निकल जाता है। मुंबई से शिमला तक के ये कुछ घंटे रिदांश के लिए बहुत ही मुश्किल भरे थे। जैसे तैसे रिदांश का ये वक्त कटा और वो शिमला पहुंचा, जहां टॉम ने पहले से ही उसके लिए गाड़ी का इंतजाम करवा रखा हुआ था। रिदांश बैक सीट पर बैठता है और टॉम ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर। कुछ ही पल में उनकी गाड़ी वहां से चल पड़ती है। ड्राइवर को पहले से ही उनकी लोकेशन पता थी जहाँ उसे रिदांश को लेकर जाना था, और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक हॉस्पिटल के बाहर जाकर रुकती है। ये देखकर रिदांश सवालिया नजरों से टॉम को देखता है। टॉम, बॉस, दक्ष सर यहीं हैं। इसके आगे रिदांश टॉम से ना तो कुछ पूछता है और ना ही वो कुछ बताता है। रिदांश अपने चेहरे के परेशानी और फिक्र के भावों को छुपाकर ब्लैंक एक्सप्रेशन का मास्क लगाकर दाढ़ी से उतरकर अंदर की ओर बढ़ जाता है। ऊपर से भले ही रिदांश खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से हर बढ़ते कदम के साथ उसका दिल किसी अनहोनी या बुरा होने के डर से घबराते हुए धड़क रहा था। कुछ ही देर में टॉम एक कमरे के सामने पहुंचकर रिदांश को अंदर चलने का इशारा करता है और डरते हुए उस कमरे का दरवाजा खोलता है और कमरे में कदम रखते ही रिदांश के कदम दक्ष को देखते ही वहीं जम सी जाती हैं। दक्ष हॉस्पिटल के बेड पर बेजान सा 50 मशीनों से घिरा बेसुध पड़ा था और उसके मुंह पर ऑक्सीजन के साथ ही उसके शरीर पर कई ताज़ा और गहरे जख्म थे। दक्ष की हालत देखकर रिदांश अपनी आंखों से चश्मा उतारता है और अपने हंसते मुस्कुराते दोस्त को आज यूं बेजान और बेसुध देखकर ना जाने कितने सालों पहले अपने पिता के मरने के बाद आज पहली बार रिदांश की पत्थर हो चुकी आंखों में नमी आई थी और आज उसे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसा उसे अपने पिता के खोने के वक्त हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का एक मजबूत सहारा और पिलर उससे छिन रहा हो। रिदांश एकटक दक्ष को देखते हुए बोझिल कदमों से उसके करीब जाता है और उसके बेजान से हाथ को थामकर दर्द से एक दूसरे के साथ में बीते वक्त को याद करने लगता है। कुछ ही देर बाद अनिकेत वहाँ पहुँच जाता है, जिसे टॉम ने रिदांश के कहने से यहाँ की सारी इत्तला पहले ही दे दी थी, और दक्ष की ऐसी हालत देखकर अनिकेत भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। अनिकेत, क्या हो गया ये सब और कैसे हुआ? टॉम, बॉस को कहने के बाद मैंने अपने लोगों को दक्ष सर की लोकेशन का पता करने का ऑर्डर दिया और कुछ ही देर में मेरे लोग उनकी लास्ट लोकेशन का पता भी कर लिया था, जो असल में एक पहाड़ी की लोकेशन थी। लेकिन फिर कुछ ही देर में अचानक मेरे लोगों से दक्ष सर के सारे सिग्नल और कॉन्टैक्ट टूट गए। काफी कोशिशों के बाद भी जब उन लोगों का वापस से दक्ष सर से किसी भी तरीके का दोबारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं जुड़ पाया, तब मेरे लोग उस पहाड़ी पर पहुँचने के लिए निकल गए और वहाँ काफी लोगों से पूछने पर पता चला कि कुछ देर पहले ऊपर पहाड़ी से एक आदमी गिरकर सड़क पर आ गिरा था और जिसकी हालत बहुत ही गंभीर थी और कुछ लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। जब मेरे लोग हॉस्पिटल पहुंचे और वहां के स्टाफ से दक्ष सर की तस्वीर दिखाकर पूछताछ की तो पता चला कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि दक्ष सर ही हैं और हॉस्पिटल में उन्हीं को लाया गया था और उस वक्त उनका ऑपरेशन चल रहा था। बस फिर मैं बॉस को लेकर सीधा वहीं चला आया। तभी एक डॉक्टर दक्ष के कमरे में आता है। रिदांश, बिना किसी भाव के, क्या हुआ है मेरे दोस्त को? डॉक्टर, इनको जब कुछ घंटे पहले हॉस्पिटल लाया गया तो इनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल थी। तुरंत ऑपरेशन करके इनकी जान तो बचा ली गई, लेकिन अनिकेत, लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर, ये कोमा में जा चुके हैं, या अगर मैं ये कहूँ कि इनके दिमाग ने रिएक्ट करना ही बंद कर दिया है या वो रिएक्ट करना ही नहीं चाहते तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। जितना मुझे अनुभव है, ऐसा किसी के साथ सिर्फ तभी होता है जब उसके दिल और दिमाग पर किसी बात का गहरा असर पहुंचता है।
लेकिन ये कब तक पहले की तरह नॉर्मल हो पाएगा?
डॉक्टर, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है अब ये कभी दोबारा ठीक ही ना हो और बाकी की सारी जिंदगी सिर्फ मशीनों के सहारे ही जिए।
रिदांश गुस्से से, जस्ट शट अप, बकवास बंद करो अपनी। मेरा दोस्त ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा और बहुत जल्द।
अनिकेत, रिदांश का कंधा थामकर,
जस्ट रिलैक्स रिदु, रिलैक्स। डॉक्टर सिर्फ वही बता रहे हैं जो दक्ष की कंडीशन कह रही है। डॉक्टर की तरफ देखकर,
आई एम सॉरी डॉक्टर, रिदांश के बिहाफ पर मैं आपसे माफी मांगता हूँ, बस ये थोड़ा डिस्टर्ब है इसीलिए ओवर रिएक्ट कर गया।
डॉक्टर, इट्स टोटली ओके, मैं समझ सकता हूँ।
अनिकेत, अगर हम दक्ष को इलाज के लिए अब्रॉड लेकर जाएं, तब तो उसके जल्द ठीक होने के चांसेस है ना?
वेल, आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ये बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो आपको अपने 25 साल के तजुर्बे बताया है और मेरे तजुर्बे के हिसाब से अब इनको दुनिया की कोई दवा नहीं बल्कि बस दुआ ही लग सकती है। जस्ट फेथ इन गॉड।
एक पर रुक कर,
एक्सक्यूज मी। इतना कहकर डॉक्टर रूम से बाहर चले जाते हैं और अनिकेत मायूसी और दुख भरे भाव से दक्ष को देखने लगता है।
रिदांश सख्त भाव से टॉम की तरफ देखकर,
मुझे जल्द से जल्द उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसे ढूंढने चाहे पाताल जाना पड़े, मगर उसे ढूंढ कर लाओ।
टॉम अपना सर हिलाकर,
यस बॉस, रिदांश गुस्से से लाल आंखों से, जिसने भी मेरे दोस्त की ये हालत की है, आई स्वेर, मैं उसकी जिंदगी को जीते जी जहन्नुम बना दूंगा। अगले ही दिन कुछ डॉक्टर्स की निगरानी में सावधानी के साथ प्राइवेट प्लेन में दक्ष को मुंबई शिफ्ट ले जाया गया। काफी महीनों तक रिदांश और अनिकेत ने बड़े से बड़े डॉक्टर से दक्ष के ट्रीटमेंट की सलाह ली और अब्रॉड जैसे बड़े बड़े देश के डॉक्टर से दक्ष का इलाज करवाया, लेकिन सबका एक ही रिजल्ट था और दक्ष की हालत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। हार कर रिदांश और अनिकेत कुछ अब्रॉड के डॉक्टर्स के साथ दक्ष को वापस मुंबई ले आए। दक्ष की हालत की वजह से तो रिदांश पहले ही परेशान और मायूस था और उस पर इतने वक्त तक उस लड़की के बारे में कोई भी जानकारी न मिलना आग में घी डालने जैसा था। आज भी रिदांश अपने लोगों पर इसी बात का गुस्सा उतार रहा था और उसके सीक्रेट एजेंट अपना सर झुकाए उसके सामने खड़े थे और अनिकेत भी वहीं मौजूद था। रिदांश गुस्से से, तुम सबसे इतने वक्त से एक छोटा सा काम नहीं हुआ? अगर तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ, एक मामूली लड़की की इन्फॉर्मेशन नहीं निकली तुम लोगों से, तो और क्या ही काम आओगे तुम मेरे? सबके सब यूजलेस हो। नाउ 1 वीक, सिर्फ एक हफ्ता है तुम्हारे पास। अगर इस बीच तुम उस लड़की के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देने में नाकाम रहे तो दोबारा अपनी ये शक्लें मत दिखाना मुझे। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। रिगांश की बात सुनकर जल्दी से सारे लोग वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। अनिकेत, जिस तरीके से इतने वक्त से हमें उस लड़की के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन तो दूर, एक छोटा सा सुराग भी हाथ नहीं लगा है, उस हिसाब से तो यकीनन वो लड़की कोई छोटी मोटी या मामूली हस्ती नहीं रखती। रिदांश सख्त भाव से, वो जो कोई भी हो, अगर उसे ढूंढने के लिए मुझे पाताल में भी जाना पड़े तो मैं जाऊँगा और उससे अपने दोस्त की इस हालत का बदला लूँगा। 5 दिन बाद, न्यू ईयर ईव, 3rd person POV। आज न्यू ईयर ईव थी। रिदांश अनिकेत के जोर देने पर उसके साथ क्लब आया था, जहां पर उसकी नज़र सुबह अपनी गाड़ी से टकराई आरना पर पड़ती है, जो बस लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि रिदांश ने मौके पर उसे संभाल लिया। तभी रिदांश के फ़ोन पर कॉल आती है और वो नंबर देखकर एक हाथ से आरना को थामे हुए फ़ोन पिक करता है और कुछ पल बाद फ़ोन सुनने के बाद वो आरना को अपनी मजबूत बाहों में उठाकर डांस फ्लोर की भीड़ को चीरता हुआ वहां से बाहर निकल आता है और उसे वहीं एक टेबल पर बैठा कर वापस से अनिकेत की तरफ बढ़ गया। अनिकेत, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही लड़की है ना जिससे तू सुबह टकराया था? रिदांश बिना किसी भाव के, तो तू उसे वहाँ अकेला बैठा कर यहाँ क्यों आ गया? हॉस्पिटल से फोन था, हमें अभी वहाँ फौरन जाना होगा। इतना कहकर रिदांश बाहर की तरफ निकल पड़ा और एक पल को एंट्री गेट पर रुक कर उसने एक बार बेहोश आरना को देखा, जहाँ अब उसके दोस्त उसे संभालने के लिए आ चुके थे। बाहर आकर रिदांश और अनिकेत अपनी गाड़ी में बैठ कर वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल गए, जहाँ पर आज दक्ष की कंडीशन को लेकर US के एक बड़े डॉक्टर से उनकी मीटिंग फिक्स हुई थी। लेकिन दक्ष की सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद इन डॉक्टर का भी कुछ खास पॉजिटिव या अच्छा रिस्पांस नहीं था। मीटिंग के बाद अनिकेत और रिदांश वापस अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद, आज रिदांश द्वारा अपने सीक्रेट एजेंट को दी डेडलाइन का आखिरी और 7वां दिन था। रिदांश अपने ऑफिस के कैबिन में ही था कि तभी उसका एक एजेंट हाथ में एक लिफाफा लिए वहां दाखिल होता है। एजेंट, ये लीजिए सर, इसमें उस लड़की और दक्ष सर की कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने शिमला की गली गली छान कर कैसे हासिल की हैं, ये मैं ही जानता हूँ। रिदांश लिफाफा लेते हुए, गुड, और अपना इनाम तुम बाहर रिसेप्शन पर ले लेना। एजेंट खुश होकर, थैंक यू सर। इतना कहकर वो एजेंट वहाँ से बाहर चला जाता है और रिदांश जैसे ही उस लिफाफे में से तस्वीरें बाहर निकालता है तो दक्ष के साथ आरना की तस्वीरें देखकर कुछ पल को शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अगले ही पल दक्ष की कंडीशन सोचकर गुस्से से उसका खून खौल उठता है।